यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद नौवा अध्याय सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 18। यस्मात् विभोमि अहम् अपि द्वि पर अर्ध धिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपः बहुसवः अवरुरुत्समानः तस्मै नमः भगवते अधिमखाय तुभ्यं यस्माद् विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यम् यस्माद् विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखायतुभ्यम् यस्माद् विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् समानः नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम् यस्माद्भिधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्
माताजी कोई बोलेंगे
यस्माद्विभे विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम्
यस्मात् जिससे विभेमी डरता है अहम् मैं अपि भी द्वि पर अर्ध
ये पढ़ लो जरा द्विपर अर्ध केवल द्विपर अर्ध कितने शून्य है देखो जरा उसमें करोड़ नहीं जरा
पीछे पीछे
फोर्टी थ्री अब्ज सारे वर्षों की सीमा तक इसके लिए थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता होगी बाद में करेंगे धिष्ण्यम स्थान में अध्यासितः स्थित सकल लोक अन्य सारे लोकों द्वारा नमस्कृतम आदरित यत जिसने तेपे किया तपह तपस्या बहुसवह अनेकानेक वर्ष अवरुरुत्समानः आपको प्राप्त करने की इच्छा से तस्मै उनको नमः मैं नमस्कार करता हूँ भगवते भगवान को अधिमखाय मोबाइल फोन बंद करके अधिमखाय समस्त यज्ञों के भोक्ता तुभ्यम आपको। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के महानतम पुरुष हैं, क्योंकि उनकी आयु सबसे लंबी है। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं, फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के महानतम व्यक्ति हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में नहीं है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में, साथ साथ सबसे पहले ब्राह्मण, सबसे पहली दीक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, और उनके दीक्षा गुरु स्वयं भगवान थे। ऐसे हैं ब्रह्मा जी। सबसे लंबी आयु पूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की है। शास्त्रों में, शास्त्रों का सबसे अधिक ज्ञान ब्रह्मा जी को है, बल्कि वो वेदों की रचना यहां पर करते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। ये है ब्रह्मा जी की योग्यता, उनकी क्षमता, उनका स्तर। और फिर भी ब्रह्मा जी ऐसा ठीक समझते हैं कि वो भगवान को नमस्कार करें। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी, जो कि इतने श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति हैं, वो भगवान को सादर नमस्कार करना ठीक समझते हैं, तो हमारे लिए और कितना आवश्यक है ऐसे करना। ब्रह्मा जी के सामने हम कौन हैं, कुछ भी नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका स्थान भगवान श्री कृष्ण की तुलना में बहुत छोटा है। यदि श्री कृष्ण सूर्य के समान है तो ब्रह्मा जी एक जुगनू के समान है। जुगनू जानते हैं ना? जुगनू मराठी मध्ये काय म्हणतात? काजवा। रात्री काजवाचं प्रकाश जे आहे ते एकदम आकर्षक दिसते, चमकदमक असते। काजवा काय? काजवा, काजवा फार सुंदर दिसते। एकदा मी बघितलं, एक झाडावर संपूर्ण हे काजवे भरलेले होते, तिकडे दिवाळी सारखं दिसत होते। पण रात्री फक्त त्यांचं आकर्षण राहतं। जैसे ही सूर्योदय होता है फिर ऐसे जुगनू दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहाँ गया उनका आकर्षण और सौंदर्य? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है, अधिक होता है कि छोटे से जुगनू के प्रकाश का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई देख भी नहीं सकता है जुगनुओं को। रात के समय तो ऐसे लगता है कि ये जुगनू का प्रकाश कितना ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से जब तक भगवान को हम नहीं जानते हैं, ब्रह्मा जी जैसे तो देवता हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। परंतु जब भगवान को जान लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ब्रह्मा से भी कितना श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी से भी कितना श्रेष्ठ भगवान का पद है या भगवान का स्थान है। भगवान तो पद नहीं है, ब्रह्मा जी एक पद है, भगवान पद नहीं है। पद, पद क्या चीज होता है? पद में विशेषता क्या होती है? वो प्राप्त किया जा सकता है ना? पद प्राप्त किया जा सकता है किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो मंत्री हो, राजा हो, या कोई खेल में श्रेष्ठ व्यक्ति हो, स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति हो। तो ये सब पद जो हैं ये प्राप्त किए जा सकते हैं कोई तपस्या करके, पढ़ाई करके, धन के द्वारा इत्यादि, बल के प्रदर्शन के द्वारा ये सब प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ये भी एक पद है जो कि ब्रह्मांड में सबसे पुण्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। परंतु भगवान ये पद नहीं है। क्यों नहीं है पद? अभी हमें क्या परिभाषा दी थी पद शब्द की? क्योंकि भगवान ये स्थान प्राप्य नहीं है हमारे लिए। आप ब्रह्मा जी बन सकते हो? हाँ बन सकते हो ना? बनना है वो अलग बात, लेकिन बन सकते हो ना? कैसे बन सकते हो? कुछ पुण्य, सैकड़ों जन्मों तक पुण्य काम करके, सैकड़ों जन्मों तक, तब जाकर फिर हम ब्रह्मा जी के पद को शायद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सैकड़ों तो क्या, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके भगवान बन सकते हो? नहीं। कोई भी बन सकता है? ब्रह्मा जी बन सकते हैं? कोई भी भगवान नहीं बन सकते। भगवान वो हैं जो पहले भी भगवान थे, हमेशा आज भी भगवान हैं और हमेशा भविष्य में भी भगवान रहेंगे। ऐसे कभी नहीं है कि कोई भगवान नहीं था और आज भगवान बन गया, या आज कोई भगवान है और वो कल भगवान नहीं रहा। ऐसे नहीं हो सकता। भगवान एक स्थान है जो शाश्वत है। जो भगवान थे वो हैं और रहेंगे, और जो भगवान नहीं है वो नहीं थे, हैं नहीं और होंगे भी नहीं। विडंबना ये है कि कि जो भगवान नहीं है वो भगवान बनना चाहते हैं, और जो भगवान हैं वो भगवान नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वृंदावन में आके ग्वाल बाल की लीला करते हैं। क्योंकि भगवान होते हैं तो सब लोग आके पूछते हैं, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, शॉपिंग लिस्ट लेकर आते हैं भगवान के पास, तो भगवान हैरान हो जाते हैं, अब मुझे शॉपिंग लिस्ट लेकर मेरे भक्तों के पास जाना है, तो ग्वाल बाल होके आते हैं, माता यशोदा से पूछते हैं मुझे ये दो मुझे वो दो, नंद बाबा से पूछते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो भगवान स्वयं वृंदावन में भगवान होना पसंद नहीं करते, वो केवल एक ग्वाल बाल रहना पसंद करते हैं, इसलिए वृंदावन की ये विशेषता है। विशेषता ये है कि वृंदावन में भगवान भगवान होने के बाद भी भगवान होना पसंद नहीं करते, और वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते हैं कि वो भगवान है, वो श्री कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं कि वो इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर ग्वाल बाल हैं, इतने आकर्षक गुणों से संपन्न हैं। अब वो भगवान होंगे भी तो होने दो, ऐसी उनकी भावना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ब्रजवासियों की भावना है। ऐसा नहीं है कि ब्रजवासियों के जानकारी में ये बात नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है, कभी कभी उनको भी ज्ञान मिल जाता है, परंतु कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है भगवान, ये बादल गरजने लगते हैं तो दौड़ के माता यशोदा की गोदी में भाग के चले जाता है, ऐसा कोई भगवान होता है क्या, भगवान ऐसे डरते हैं कभी? तो हमेशा उनके मन में ये द्वंद्व रहते हैं, ये भगवान है नहीं है, ये कौन, ये लड़का है कौन, जो भी हो चलो भूल जाओ हमारे लिए बहुत प्रिय है, फिर ये सब चिंतन करना छोड़ देते हैं, इसके कोई काम की बात नहीं है। तो न ब्रजवासी गण श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं वृंदावन में, न श्री कृष्ण अपने आप को भगवान मानते हैं वृंदावन में, वो अपने भगवत्ता को भूलना चाहते हैं, एक साधारण बाल बाल की तरह वहां लीला करना चाहते हैं, और नित्य रूप से करते हैं आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी लीलाएं, और उन्हीं लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं यहाँ पर, जब वही वृंदावन यहाँ इस भौतिक जगत में प्रकट होता है। तो इस तरह से भगवान भगवान बनना पसंद नहीं करते, और जो भगवान नहीं है वो भगवान बनना पसंद करते हैं, तो दोनों ही एक प्रकार की माया है। जो जीव भगवान बनना चाहते हैं वो तो महामाया के अंतर्गत है, ये संसार के माया के अधीन है, वो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, और जब वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, या श्री कृष्ण अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, तो ये भी भगवान की लीला शक्ति का खेल है, उनकी लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए, ताकि रसमय हो उनकी लीलाएं, रस का आदान प्रदान और भी अच्छी तरह से हो। तो जो लोग यहां महामाया के अधीन हैं, वो भगवान को जानते नहीं हैं, और क्योंकि वो जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं कि भगवान होने का मतलब क्या है, इसलिए वो स्वयं भी भगवान होना चाहते हैं, अपने आप को भगवान मानते भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, और फिर कहते हैं केवल मैं नहीं आप भी भगवान हो, आप सभी भगवान हो। तो ये एक धारणा है, इसलिए उनकी प्रार्थना रहती है सोहम या तत्त्वम असि, हम वास्तव में भगवान के दास हैं, हम कभी भगवान नहीं हैं, नहीं हो सकते, परंतु भगवान के प्रति दासत्व की भावना को भूलकर हम इस तरह अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये माया का अंतिम खेल है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, भले हम
इंद्रियों के ऊपर वश प्राप्त क्यों न कर लें, काम लोभ क्रोध इत्यादि इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लें, परंतु ये अंतिम जाल माया का है। ये देखो तुम भगवान हो, और फिर व्यक्ति सोचने लगता है कि हाँ मैं तो भगवान हूं। एक बार मैं कलकत्ता में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो वहां पे चलते चलते एक प्रवचन हमने देखा एक सभागृह में, और उसका शीर्षक था आप पूर्ण हैं। अंग्रेजी में था, तो अंग्रेजी में था यू आर द होल, मतलब आप पूर्ण हैं, आप अंश हैं ऐसा नहीं। भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, ममैव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मम एव अंशः, मेरे अंश हैं ये सारे जीव, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं स्पष्ट रूप से। परंतु इनके प्रवचन का शीर्षक था आप पूर्ण हैं, तो ये मायावादी भाष्य है। तो हम सोच रहे थे चलो जाके देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, तो अंदर गए तो इसी तरह की बातें हो रहे थे। कई लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान के दास समझते हैं, वो वैकुंठ जाना चाहते हैं, वो ऐसे कह रहे थे। एक प्रसिद्ध सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी, और फिर वो वैकुंठ जगत में क्या होता है उसकी नकल करने लगे। फिर वो कहने लगे ऐसे थोड़ी होता है वैकुंठ में, क्या करोगे अब वैकुंठ जाके, उब जाओगे, भगवान भी उब जाएंगे आप भी उब जाओगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर हम वहां से निकल गए, तो कहते कहते फिर वो ये कह रहे थे, उनका मुद्दा यही था कि देखो आप दास होके ऐसे अपने आप को छोटा मत करो, ऐसी हीन भावना नहीं रखना, आप जानो कि आपकी क्षमता क्या है, आप पूर्ण हो, आप परम हो, आप सब भगवान हो, हम सब भगवान हैं, ये मायावाद दर्शन है। तो हम जान गए कि हाँ ये कितने जबरदस्त होते हैं। एक बार हुआ ये, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊं आपको, आपने सुना भी होगा पता नहीं। अहमदनगर का एक कृष्ण भक्त था, तो आप में से कोई हुए होंगे, नाम पता नहीं मुझे, तो वो कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते हुआ ये कि एक वो वैष्णव सन्यासी को मिले, वैष्णव किसी भक्त को मिले, तो वैष्णव भक्त ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। बोला मैं तो पुनः राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में जा रहा हूँ, थोड़ी समय में पहुंच जाऊंगा। तो उसके पहले क्षमा कीजिए, तो वो पहले एक मायावादी से मिले, मायावादी सन्यासी से जाते जाते, तो मायावादी सन्यासी ने कहा कृष्ण मंदिर में क्या जा रहे हो, तुम ही तो कृष्ण हो, इसलिए अब तुम ऐसे प्रार्थना करो, इस मंत्र का जप करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ दो और ये और एक दूसरे मंत्र का जप करो जो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। वो मंत्र है सोहम। सोहम का अर्थ क्या है कोई बता सकते हैं, क्या है अर्थ? सह मतलब वो, हम मतलब अहम, मैं वही हूं, मतलब मैं परम सत्य हूं। तो उन्होंने कहा ये हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ दो और ये सोहम जपो, सोहम 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 सोहम। तो वो नया भक्त था, ज्यादा प्रवचन यहां सुने नहीं थे मंदिर में, तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई ऐसे बोल रहे हैं तो साधु हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने जप करना शुरू कर दिया सोहम सोहम। फिर आगे चलते चलते आप में से कोई जो वरिष्ठ भक्त उनको मिले, तो बोला अरे ये क्या कर रहे हो तुम तो मंदिर में आते हो ना। हाँ हाँ आता हूँ, पर ये सोहम क्या जप कर रहे हो? नहीं नहीं ये सोहम ठीक नहीं है। ठीक है चलो अभी बोल ही रहे हो ना तो ऐसे करो, ये सोहम के सामने ये दा लगा दो, दा तो दा लगाने से क्या होता है? दासोहम। तो दासोहम का क्या मतलब है? मैं दास हूं। तो ठीक है, तो दासोहम 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 करके चले जा रहे थे। फिर वापस आ रहे थे। वापस आते आते हुआ ये कि फिर से वो मायावादी व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, दासोहम दासोहम, तुम दास थोड़ी हो, तुम तो वो हो। चलो कोई बात नहीं, अब इसके सामने जरा तुम स जोड़ देना, स। तो स जोड़ने से क्या होता है? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, मैं सदा वो हूं, मैं सदा वो हूं। फिर से वो आए, फिर उधर लक्ष्मी नारायण प्रभु मिल गए उनको। अब बोले, अरे ये क्या बोल रहे हो, सदा सोहम सदा सोहम, ऐसे थोड़ी होता है। चलो भाई बोल रहे हो ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से दा जोड़ दो इसमें, फिर क्या हो जाता है? दासो दासो हम दासो दासो हम दासो दासो हम, मैं दासों के दासों का दास हूं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है मायावादी भाष्य में और वैष्णव भाष्य में। तो हमें तो ब्रह्मा जी के पद चिन्हों में चलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी जो कि सारे दुनिया के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जब वो ये ठीक समझते हैं कि हमें भगवान के चरणों में नमस्कार करना चाहिए, तो हम क्षुद्र जीव की क्या क्षमता है कि हम ऐसी बड़ी बातें करें कि मैं ही वो हूं। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, परंतु जब दांतों में दर्द होता है तो तुरंत भागे जाते हैं डॉक्टर के पास। तो भगवान है तो फिर क्यों ऐसे कष्ट होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है, यहां इसका वर्णन है, द्वि पर अर्ध। अब ब्रह्मांड की आयु है ये ब्रह्मा जी की आयु। आप थोड़े गणित करते हैं, आप में से गणित पढ़े ना सब, पाठशाला में तो कम से कम दसवीं तक पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो अब थोड़े गणित का अभ्यास करते हैं, ठीक है, तैयार हैं? चाहे आपके पास जिनमें कोई लिखने के लिए कोई खाता वगैरह है तो आप तैयार रहिए लिखने के लिए। अच्छा, अब ये कलयुग की अवधि कितनी है? 432,000 वर्ष। इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर की अवधि कितनी है? 864,000। क्यों ऐसे कहते हो आप? क्योंकि कलयुग की अवधि से दुगना है। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना है, और सत्ययुग कलयुग से 4 गुना ज्यादा है। तो इन चारों युगों को मिलाया जाए, तो अभी गणित थोड़ा करिए, 1, 2, 3 और 4 मिलाइए, कितने होते हैं? 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10। तो चारों युगों की अवधि कलयुग के 10 गुना ज्यादा है। चारों युगों को आप मिलाएंगे तो इसकी अवधि कितनी होती है? कलयुग के 10 गुना ज्यादा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना वास्तव में? तो कितना होता है? 43 लाख। हिंदी में बोलिए। हाँ, 43,20,000। ये एक चतुर्युग या दिव्य युग की अवधि है, ठीक है। अब ऐसे दिव्य युग जब 1,000 बार दोहराए जाते हैं, तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, उनका एक दिन। उनका एक दिन 12 घंटे का होता है, रात भी 12 घंटे की होती है। तो गुना 1000 करिए, कितना होता है अभी? चलिए खाते हैं ना आपके पास, देखिए करिए। क्या 4 अरब 32 करोड़? ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए। अब गुना 2, क्योंकि 24 घंटे होने चाहिए ना, तो फिर 8 अरब 64 करोड़ साल। ये ब्रह्मा जी का एक पूरा दिवस है, अर्थात 24 घंटे। अब उनके 360 या एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो गुना 30 कीजिए। अभी कंप्यूटर चला चला के गिनती करना हम भूल गए हैं ना, और उसके बाद गुना 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, और उसके बाद ये तो 1 साल हो गया ना ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी 100 साल जीते तो और 100 गुना 100, तो ये ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि हो गई। कम से कम प्रवचन के अंत तक आप वो करके मुझे बताइए। तो ये ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि है, और ये ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड की अवधि भी है, और हमारी आयु क्या है? 60, 70, 80 साल। दुर्भाग्यशाली हो तो 90 तक रहेंगे, बस यही हमारी कलयुग की जीवन की अवधि है। और ब्रह्मा जी की अवधि देखिए, तो द्वि पर अर्ध, अर्ध मतलब ये 50 साल ब्रह्मा जी के जो होते हैं उसके 2 दुगना, तो इस तरह से द्विपरार्ध, द्विपरार्ध मतलब ब्रह्मा जी का पूर्ण आयु। अभी ब्रह्मा जी की आयु क्या है, कोई बता सकते हैं? 50 साल पूरे हो गए, और 50 साल पूरे होने के बाद ये उनका पहला दिन चल रहा है। ये ब्रह्मा जी की आयु है, अभी और 50 साल बचे हैं ब्रह्मा जी के, उसके बाद ब्रह्मांड का नाश होगा। तो ये हैं ब्रह्मा जी। यदि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि वो एक जुगनू के समान है और कृष्ण सूर्य के समान है, तो हम ब्रह्मा जी के सामने क्या हैं? अगर वो जुगनू है तो हम क्या हैं? हम अणु भी नहीं हैं ब्रह्मा जी के सामने, और फिर श्री कृष्ण के सामने हम कौन हैं? आप समझ रहे, कल्पना कीजिए, जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, मतलब उनको कोई बिल्कुल कल्पना ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है, बस बोल देते हैं कुछ ना कुछ। भगवान कितने महान हैं ये जानना बहुत मुश्किल है। कई लोग हैं जो कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, परंतु कितने महान हैं ये भी जानना आवश्यक है। ब्रह्मा जी कहते हैं दशम स्कंद में भागवत के, जानंत एव जानंतु किम बहुक्तिन मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और इस स्तुति में वो इस श्लोक को कहते हैं। वो कहते हैं जानंत एव जानंतु, कि हे भगवान, ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं संसार में जो कहते हैं मैं श्री कृष्ण को जानता हूं। कहने दीजिए उनको, ऐसे वो मूर्ख हैं। जहां तक मेरा सवाल है, किम बहुक्ति न मैं प्रभु, मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना, भूल जाना चाहिए उनको, इतने मूर्ख हैं। वो सोचते हैं कि मैं जानता हूं कृष्ण को, कृष्ण इतने महान है कैसे पूरी तरह से जान सकते हैं उनको। किम बहुक्ति न मैं प्रभु, ठीक है मैं और क्या कह सकता हूं इसके बारे में, कहने दीजिए ऐसे लोगों को इस तरह से। जहां तक मेरा सवाल है, मनसो वपुषो वाचो, अपने मन से, अपने शरीर से और अपने वाणी से, वैभवम तव गोचरा, मैं आपके दिव्य गुणों की महानता की कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं वर्णन करने के लिए योग्य नहीं हूं, वो सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि आपका मैं आपको मैं पूरी तरह से समझूं, आपके ऐश्वर्य को आपके गुणों को मैं समझ लूं। यदि भी ऐसे कोई दिन आए कि कोई वैज्ञानिक हो यहां जो आकाश में जितने भी तारे हैं उनको गिन ले, या जितने ब्रह्मांड में अणु हैं उनको भी गिन ले, और जो हिम है बर्फ गिरता है उसके भी कितने टुकड़े होते हैं वो भी गिन ले, परंतु आपके गुणों को कभी कोई गिन नहीं सकता। यहां तक कि अनंत शेष वो भी अनादि काल से आपका गुणगान करते आए हैं, परंतु आपके गुणों के वर्णन करने का अंत तक पहुंचे नहीं है और नहीं पहुंचने वाले हैं। अनंत काल तक वो आपका गुणगान करते रहेंगे, फिर भी आपके गुणों की वर्णन की समाप्ति नहीं होगी। तो ऐसे महान है भगवान, कितने अल्पज्ञ हैं वो लोग जो केवल भगवान को साधारण मानते हैं। देखिए, लोग दो प्रकार की गलतियां करते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां, लेकिन उनमें से दो प्रकार की गलतियां ऐसी हैं। वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण आदमी है, तो भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, ये एक प्रकार की गलती। जैसे कि वो कहते हैं जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो भी तो हमारे जैसे आदमी थे, वो थोड़ी भगवान थे, ऐसे कई लोगों की धारणा है ना, ऐसे कहते हैं। और दूसरी प्रकार की गलती क्या है, वो साधारण व्यक्ति को भगवान समझते हैं। भगवान को साधारण व्यक्ति समझना या तो फिर साधारण व्यक्ति को भगवान समझना, ये दोनों प्रकार की गलतियां हैं। सत्य क्या है कि साधारण व्यक्ति है, भगवान भगवान है। साधारण व्यक्ति असाधारण कब हो सकता है, जब वो भगवान का भक्त बने, अपने दासत्व की भावना को विकसित करे, शुद्ध भक्त बन जाए, तब वो असाधारण हो जाएगा। असाधारण होने का मतलब है कि वो भगवान के धाम में चले जाएगा और उसके वास्तविक जो स्वरूप को वो प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी, इतने दिव्य और अद्भुत गुणों से संपन्न होने के बाद भी, ब्रह्मा जी जो कि सबसे ज्ञानी और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ब्रह्मांड में, उनमें अहंकार नहीं आता है। वो समझ लेते हैं कि मेरा स्थान क्या है और भगवान का स्थान क्या है, इसलिए वो भगवान के शरण में आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका दास हूं। और जब भगवान उनको उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी ये भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर ऐसे कृपा करें कि मेरे अंदर कभी भी घमंड ना आ जाए, अहंकार नहीं आ जाए, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, सबसे पहला दीक्षित भक्त हूं, ब्राह्मण हूं, वेदों को मैंने ही इस जग ब्रह्मांड में प्रकट कराया है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हूं इस ब्रह्मांड में, तो अहंकार होने की संभावना है ना, तो कृपया मुझे इस अहंकार से बचाइए, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो हमारे लिए बहुत अनुसरणीय बातें हैं ये सब। तो ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, हमारा संप्रदाय भी ब्रह्म संप्रदाय है, तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नंबर मिल गया, क्या है बताओ, हिंदी में बताओ। देखिए इतना लंबा नंबर है कि पता भी नहीं जाता। हिंदी में बोलिए। तीन कोटी कोटी 3.1 3.11 कोटी कोटी कितने अरब, कितने करोड़ अरब वर्ष हो जाते हैं। ब्रह्मांड की आयु वैज्ञानिकों को ये देना चाहिए था, कोई श्रीमद् भागवत के आधार पर ये सब ज्ञान दिया हुआ है। देखिए हमारे सब इंजीनियर बड़े बड़े सब दिखना उधर कर रहे हैं ऐसे बैठ के। हाँ फिर से जोर से कहो, माइक में कहो, माइक दे दो जरा।
31 खरब।
31 खरब। एक खरब कितना होता है? कितने अरब? माइक में बोलो, अभी जो बात की वो माइक में कहो।
जैसे ऐसे बोलने की काई लाई सैकड़ा हजार 10,000,000,000 करोड़ 10 करोड़ यहाँ पे 31 खरब 10 अरब 40 करोड़।
31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष ये है ब्रह्मा जी की अवधि। सर पर्याप्त मात्रा में चकरा गया ना?
कुछ समझे नहीं।
अभी कोई कहेंगे कि मैं भगवान हूं? नहीं कहेंगे ना। सोहम कहेंगे? कोई दासो हम कहेंगे ना। हरे कृष्णा।
कल के प्रश्न,
हाँ कल के प्रश्न संक्षेप में करेंगे। हर इंसान घर में अच्छा रहता है, लेकिन घर के बाहर पड़ता है तो दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता। घर में अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु बाहर नहीं करते, तो ऐसा क्यों? कभी कभी कोई लोगों की शिकायत होती है बाहर अच्छा व्यवहार करते हैं घर में नहीं करते, ऐसे कई बार शिकायत मिलती है। अन्यों के साथ सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे घर में आके फिर न जाने क्या स्वरूप हो जाता है उनका। तो भक्त को चाहिए कि जैसे अंदर वैसे बाहर, एक जैसे होना चाहिए। जब हम सत्संग में आना चाहते हैं तो उस समय कुछ कठिनाइयां होती हैं, जैसे मेहमान आते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, घर के काम होते हैं, उस स्थिति में कैसे बैलेंस करें? हाँ कभी कभी ऐसे हो सकता है, संसार है आखिर, कुछ न कुछ तो होता रहेगा। तो आप उस समय थोड़े समझदारी से काम लीजिए। यदि ऐसा कोई कार्य है जिसको आप टाल सकते हैं और टालने से कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, तो टाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये टालने से समस्या बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं होगा, तो फिर मत टालिए, उसी को कर दीजिए और उस समय सत्संग में नहीं आइए। कोशिश कीजिए आने के लिए, परंतु सत्संग में आने से यदि अधिक समस्या हो रही है तो और कभी 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 ऐसे हो जाता है, तो निराश मत होइए। अपने आप को वैष्णव समझना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? क्या समझते हो आप? अपने आप को वैष्णव समझना चाहिए या नहीं? बताइए, समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? हाँ यदि हम समझेंगे तो हमारा बर्ताव वैष्णव की तरह रहेगा। यदि हम समझेंगे मैं वैष्णव नहीं हूं तो सोचेंगे छूट है, चलो मैं वैष्णव नहीं हूं ना तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मैं सिनेमा घर में जा सकता हूँ, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब समझेंगे कि मैं वैष्णव हूं तो फिर हम वैष्णव की तरह कम से कम व्यवहार करने का प्रयास तो करेंगे। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो किसी तथाकथित गुरु से संबंधित हैं, जो परंपरा में नहीं आते हैं, जो कोई गलत काम करते हैं, तो उनसे हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए? आप उनको धीरे धीरे प्रभुपाद जी से जोड़ दीजिए, प्रभुपाद की किताबें दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए, उनको संकीर्तन में के कार्यक्रम में सत्संग में ले आइए, ऐसे धीरे धीरे से उनको भगवान कृष्ण के शरण में लाइए। आपने कहा कि ब्रह्मा जी को कोई अहंकार नहीं है, परंतु ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी अहंकार के वश में आते हैं, इसको कृपया बतलाइए, ये किस तरह का अहंकार था? ये अहंकार नहीं था, वास्तव में आचार्यों का वर्णन है कि ब्रह्मा जी भगवान के भगवान का गुण गौरव करना चाहते थे, भगवान के ऐश्वर्यों का, अद्भुत गुणों का प्रदर्शन सारी दुनिया को दिखलाना चाहते थे, और ब्रह्मा जी वास्तव में थोड़े भ्रमित हो गए थे, अहंकार की वजह से नहीं, वो सोचने लगे कि ये भगवान है तो इस तरह का कुत्सित अन्न क्यों खा रहे हैं, साधारण भोजन बच्चों के साथ में यमुना पुलिन में बैठकर दोनों हाथों में, एक हाथ में चावल और कुछ दूसरे हाथ में फल और दही, वैसे किसी सभ्य समाज में व्यक्ति दाहिने हाथ से ही खाता है, बाएं हाथ से नहीं खाया जाता, जैसे मान लीजिए हम चपाती भाखरी कुछ खा रहे हैं तो दोनों हाथों से तोड़ना नहीं चाहिए, एक ही हाथ से करना चाहिए, बाया हाथ प्रसाद के लिए नहीं होता, भोजन के लिए नहीं होता है, और यहाँ ये बैठे कृष्ण दोनों हाथों से खा रहे हैं, और कभी इसका झूठा खा लिया, कभी उसका झूठा खा लिया, और साधारण भोजन कोई ऐसे छप्पन भोग वाली बात तो नहीं है, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये भी एक विचार उनके मन में आया, तो अहंकार नहीं हुआ था उनको, भगवान के योग माया के अधीन होकर उन्होंने ऐसे कार्य किए थे। शालेय शिक्षण प्रणाली को कितना महत्व देना चाहिए? उतना महत्व जितना कि हमारे भक्ति के लिए आवश्यक है, आगे संसार में यहाँ रहने के लिए जितना आवश्यक है, ताकि हम इस संसार में रह सकें अच्छी तरह से, और साथ साथ में हमारी भक्ति भी अच्छी तरह से चल सके। ये शिक्षण का विषय बहुत लंबा है, गहरा है, इसकी और अधिक चर्चा नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माझा प्रश्न जब संबंधित आहे, आपकी लिपि थोड़ी सी थोड़ा
पढ़ के होता है, जपन के लिए अच्छा होता है, और सुबह तो मंगलारती किया जाता है, मंगलारती के समय जप करना चाहिए क्या?
सकाळी ब्रह्म मुहूर्ताच्या वेळी मंगल आरतीच्या वेळी आम्ही जप केलं पाहिजे की आरती केली पाहिजे?
नाहीतर जप मंगलारती केली तर मुहूर्त निघून जात,
मंगल आरती केली तर जपचं वेळ निघून जात। काल आम्ही चर्चा करत होतो ना संतुलनच्या विषयी, आठवण आहे कोणाला? कोणाला काय म्हणत होतो मी, आठवण आहे? माइक प्रत्येक कार्याचं वेळ निर्धारित असतो, त्याच वेळी ते कार्य आम्ही केलं पाहिजे। मंगल आरतीचा वेळ असतो त्यावेळी मंगल आरती करायचं, आणि जपच्या वेळी जप करायचं। कधी जर असं झालं ठीक आहे मंगल आरती आम्ही करू शकलो नाही, जाऊ शकलो नाही, तर जप करा, नाहीतर घरामध्ये मंगल आरती करा। मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्तला केलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर जप केलं पाहिजे। परंतु मंगल आरतीच्या आधी पण तुम्ही जप करू शकता आणि थोडे उशिरात पण मंगल आरती करू शकता, काही हरकत नाही आहे। परंतु मंदिरमध्ये जे कार्यक्रम असतो ते निर्धारित वेळावर असतो, 4:30 पहाटे मंगल आरती, मग 5:15 जप सुरू होते। तर घरामध्ये जसं अनुकूल आहे तसं तुम्ही करू शकता, पण करा, हा ठीक आहे। हा तुम्ही प्रश्न होता काय?
कंपनी में काम करते हैं तो जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर ये मोड़ा पैशन या रेलिवेंट में रचे, जनरली लीडर्स काफी एक्साइट, तो सबको मालूम है कि मैं इस पर नहीं जाता हूँ, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम सीधे सिंप्लिसिटी से तो ऐसा करते हैं तो प्रभाव उल्टा हो जाता है, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते हैं, जो कि टालना कैसे हम बोले उनको अच्छी तरह से मैनेज करे कि मैं नहीं करना चाहता। जो वेटेज आपने बताया कि वेटेज और ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है, वो काम जैसे क्वांटिटी है,
वो सोचेंगे कि ये इतना सीधा भोला आदमी है, इतना सिंसियर है कि चलो ज्यादा से ज्यादा मेरा कम भी उसको दे दो और हम बैठ के आराम से गपशप करेंगे। नहीं, अपने काम में सिंसियर होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप का शोषण होने दें। हम अन्यों का शोषण नहीं करेंगे, अपना शोषण भी नहीं होने देंगे। तो अच्छे ढंग से आप उनको बता सकते हैं कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हमारी समय की सीमा है, आखिर कितना कर सकते हैं, ये अलग अलग हमारे जो सेवाएं हैं।
इसमें करेक्शन है, वो जब भी प्रामाणिक रूप से सेवा करते हैं तब ये अपने आप पोस्ट बढ़ता है और उसमें समय ज्यादा, ऐसा नहीं कि बॉस उसको शोषण करता है, राइट? प्रामाणिक रूप से सेवा करते कंपनी में, अच्छे पोस्ट पर है बप्रो जी, तो प्रामाणिक रूप से मतलब बताया जाता है कि बाहर हम काम करते तो प्रामाणिक रूप से करते, वो करने से क्या होता है, वो कंपनी का दृष्टि चेंज हो जाता है, उनको ऊपर वाली पोस्ट में देते
हैं। ठीक है, परंतु ये तो साधारण बात है कि यदि आप अच्छी सेवा कर रहे हैं कंपनी में तो कंपनी आपको ऊंचे पद पे ले जाएगी। यदि ऊंचे पद पे आपको जाना है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, तनख्वाह ज्यादा होगी, जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, तो फिर वो आपको निर्णय लेना है कि हमें प्रमोशन लेना है कि नहीं लेना है, ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। परंतु आपके प्रश्न का तात्पर्य हमें ऐसे लगा कि जब आप सेवा कर रहे होते हैं, जब लोग जानते हैं कि अच्छी तरह से काम करते हैं, सिंसियर है, तो अपना काम थोड़ा दे देते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, बस उससे थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। और यदि प्रमोशन या प्रगति हो रही है तो ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि आपके भक्ति के लिए अति बाधक नहीं होगा ये, तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप सोचते हो कि इसको लेने से बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो फिर दूसरा कोई उपाय सोच सकते हैं। ठीक है, भक्त ने सामाजिक, मानसिक, कौटुंबिक, आर्थिक स्तर पर कैसे रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए कि वो कृष्ण को भूले नहीं। अपने सारे जिम्मेदारियों को ऐसे संभालना चाहिए ताकि जिम्मेदारियां भी ठीक ठाक हो जाएं और कृष्ण को भी याद कर सके। यदि हमने इन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की कृष्ण के वजह से कि मैं कृष्ण भक्त हूं और मैं बिल्कुल मेरे व्यवसाय में ध्यान नहीं दूंगा, नौकरी में जाऊंगा नहीं, परिवार का ध्यान नहीं करूंगा, तो आगे चल के जब उपद्रव मच जाएगा, समस्याएं आएगी, तब जब करना छोड़ देंगे, इतनी समस्या बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा कि जब नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर इन कर्तव्यों को इतना हम करेंगे, इतना पालन करेंगे, इतने इसमें इतना डूब जाएंगे कि मंदिर आने के लिए समय नहीं, सत्संग के लिए समय नहीं, जप के लिए समय नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो लापरवाही करने से या इन जिम्मेदारियों को आवश्यकता से अधिक करने से, दोनों में ही समस्याएं हैं। इसलिए हमें संतुलित जिम्मेदारियों का को निभाना चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण को हम अच्छी तरह से याद कर सकें। निस्वार्थ और स्वार्थी कार्य में कैसे हम भेद कर सकते हैं? जो श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम कर रहे हैं, उनकी भक्ति के लिए हम कर रहे हैं, वो निस्वार्थ है। जो अन्यों को कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, वो निस्वार्थ है। जो अपने केवल भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, जिसमें भगवान का संबंध नहीं है, वो स्वार्थी है। जब हम प्रसाद का सेवन करते हैं तो वैष्णव आचार के अनुसार, सदाचार के अनुसार, कौन सी चीजें हमें पहले लेनी चाहिए, जैसे मीठे पदार्थ हो या चपाती हो, फल हो, चावल हो, जो चाहे आप ले सकते हैं। कई बार जो विदेश के भक्त होते हैं ना, उनको ये पता नहीं होता है, पहली बार एक नए भक्त आए थे, विदेश के भक्त थे, अब उनके यहाँ भोजन की पद्धति क्या होती है कि एक जब आइटम दिया जाता है तो उसको पूरा खत्म करना होता है, फिर दूसरा दिया जाता है, फिर उसको पूरा किया जाता है, फिर तीसरा दिया जाता है। ऐसे उनकी पद्धति, पहले सूप देते हैं तो सूप ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और आता है फिर वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा कुछ आता है फिर वो खा लेते हैं, इस तरह से उनका भोजन होता है। तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने सोचा, सामने दाल चावल सब्जी ये सब था, तो उन्होंने सोचा ये भी ऐसे ही खाया जाता है, तो सबसे पहले दाल पी लिया, फिर जो है चपाती खा ली ऐसे ही, फिर चावल खा लिया, उसके बाद सब्जी खा ली। बाद में भक्त देख रहे थे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रसाद का सेवन किया जाता है। तो चाहे आपको जो भी अच्छे लगे वो बोले से कर लो, आखिर सब प्रसाद ही है ना, महाप्रसाद है, ऐसे करके ले लो वैसे करके ले लो, महाप्रसाद ही है, भेद नहीं करना चाहिए। एक बार एक मंदिर में हुआ ये कि भगवान के जो घर है, पुजारी घर है, जहां भगवान को भोग चढ़ाने के बाद महाप्रसाद रखा जाता था, वहां से रोज जो खीर महाप्रसाद है वो चोरी हो जाता था। अब मंदिर के अध्यक्ष तक बात पहुंची, जो पुजारी थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ले जा रहा है, कौन खीर महाप्रसाद चोरी कर रहा है, केवल खीर की कटोरी जा रही थी। तो ये मंदिर के अध्यक्ष तक बात पहुंची, उन दिनों में तो ये कैमरा वगैरह की बात तो नहीं थी, आजकल तो लोग सब जगह कैमरा लगाते हैं ना, तो उन दिनों में ये सब तो नहीं था। तो बड़े परेशान हो गए थे सभी लोग, रखवाली करने लगे, परंतु फिर भी खीर चोरी हो जाती थी, उनको अंदर रखते थे ताला मारते फिर भी चली जाती थी। तो ऐसे अनेक दिनों के बाद वो चोर पकड़े गए, वो एक ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी को पकड़ा, मंदिर के अध्यक्ष के जो दफ्तर में ले गए, तो बड़े गुस्से हो गए थे, हम इतने दिनों से इतने परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो ये महाप्रसाद खीर को चोरी कर रहा है, तुम क्यों चोरी कर रहे थे? तो कहने लगे प्रभु जी ये तो प्रसाद है ना, तो महाप्रसाद जो होता है वो भगवान से अभिन्न होता है, तो मैंने कौन सी बड़ी गलत बात की है, ये तो महाप्रसाद की हो, ये तो कृष्ण है, इसलिए ऐसे बताया जाता है कि कृष्ण के प्रति हमारा हमारी आसक्ति होनी चाहिए, तो इसमें कौन सी खराब बात है। तो मंदिर के अध्यक्ष उस भक्त से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, मतलब ठीक है तुम्हें महाप्रसाद से आसक्ति है ना, क्योंकि महाप्रसाद श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो तुम करेला महाप्रसाद क्यों नहीं चोरी करते थे कभी, कभी दाल महाप्रसाद क्यों नहीं चोरी करते थे, कभी चावल क्यों नहीं चोरी कर ली, केवल खीर ही क्यों चोरी कर ली? इसका मतलब है तुम इसे महाप्रसाद नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि ये जीभ के लिए बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। तो उसी तरह से एक बार हमारे थाली में आ जाता है, सब महाप्रसाद है भगवान का, तो जैसे मन करे खा लीजिए। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, ये तो महाप्रसाद की लीला। जगन्नाथपुरी के भी कई भक्त हैं, उनकी भी बहुत बड़ी लीलाएं हैं। हाँ अंतिम प्रश्न, एक हाँ एक प्रश्न यही है, क्या कोई एक समय ही अष्टांग योगी और भक्त हो सकता है? पृथु महाराज ने अंतिम समय में अपने मूलाधार स्वधिष्ठान आदि चक्र जागृत करके देह छोड़ दिया, हालांकि वे भक्त थे। देखिए पृथु महाराज की बात अलग है, क्योंकि वो कलयुग के नहीं थे, नहीं द्वापर युग के थे, वो उस युग के थे, सत्ययुग की बात है ये। तो उस समय ये सब यही तो पद्धति थी ना, कलयुग में तो ये पद्धति नहीं है। किसी कारणवश हमारी साधना सेवा में खंड पड़ गया, फिर से शुरुआत हुई, लेकिन अपराध की भावना मन में रहती ही है। क्या कारण, क्या करना चाहिए? भक्तों के शरण में आना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जप आदि करना चाहिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बस फिर सब कुशल मंगल हो जाएगा। स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। मैंने सुना नहीं ऐसे, स्वर्ग में जाएंगे नहीं, हमने ऐसे पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। ठीक है, जो भी हो भी तो। हाँ, फिर आगे तो इसका उपाय क्या है? बताओ। मतलब इसी जन्म में जाना चाहिए, इसी जन्म में जाना चाहिए और अगले जन्म के लिए रुकना नहीं चाहिए कि स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां बहुत आराम करेंगे, सोमरस का पान करेंगे, नंदन कानन में रमण करेंगे। ठीक है अभी। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
परम पूज्य भक्त महाराज की जय।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगली बार तो जब तब आप सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे।
महाराज जी बोल रहे हैं अगली बार महाराज आएंगे तब तक सब लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे।
हरि ओम।
बनना है आपको, ऐसा बोल रहे महाराज। मतलब हमारे साथ ना करेंगे।